वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्तिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी वैष्णवगण वैष्णवीगण और उपस्थित जयपुर के सज्जन वृंद, मैंने कल कहा था कि हम लोग सभी सुख शांति चाहते हैं, किंतु जगत भर में देखते हैं कि सुख शांति नहीं। क्यों ये जेल खाना है? कल विस्तार पूर्वक इसको बतलाया। इसलिए इस संसार में सुख और शांति ढूंढे ये बुद्धिमान लोग नहीं खोजते, वो जानते हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि हम भगवान को भूले हैं। शरीर में आसक्त है, इसलिए भगवान बड़े ध्यान देखते कि हमारा दास दासी हमें जन्म जन्मांतरों से भूला हुआ तेताप ग्रस्त होकर के बड़ा दुख पा रहा है। इसलिए दया के मारे स्वयं कभी कभी गोलोक वृंदावन से पधारते हैं, साकेत धाम से पधारते हैं, और कभी अपने प्रभावशाली आचार्यों को भक्तों को आचार्य के रूप में भेज करके अपनी लीला कथाओं के माध्यम से नाम के माध्यम से जगत का कल्याण करते हैं। भगवान ने अपनी लीलाओं में लीला कथाओं में और भगवान अपने नाम में अपनी सारी शक्तियों को संचयित कर दिया है। जो वो खुद नहीं कर सकते उनका नाम कर देगा, उनकी लीला कथाएं कर देंगे। वो लीला कथाएं भी दया करती हैं, प्रभु की ही हैं, प्रभु से अब हैं। इसलिए भगवान स्वयं जगत में आकर के करुणामयी माधुर्यमयी मर्यादामयी लीलाओं को करते हैं। कभी कभी प्रहलाद भक्त को रक्षा करने के लिए निशिंग रूप में आते हैं, अपना भक्त वात्सल्य गुण दिखलाते हैं। इस तरह से इन लीलाओं को जो श्रवण करेगा उसको भगवत भक्ति होगी और अंत में भगवान के निकट पहुंचेगा। इसीलिए कृष्ण ही अवित्रेता युग में आराम के रूप में पधारे और अपने स्वांस भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को भी ले आए, अपनी प्रिया जी सीता जी को भी ले आए और ऐसी मनमोहक करुण लीलाएं की जिससे जगत चमत्कृत रह गया। जाने के बाद में हनुमान जी को छोड़ गए, तुम रहो और हमारी लीला कथाओं का विश्व में प्रचार हो, इस पर तुम प्रचार करना। इसलिए हनुमान जी के इच्छा के विपरीत, भगवान के इच्छा के विपरीत भी हनुमान जी को इस जगत में रहना पड़ा। जैसे कृष्ण लीला के पश्चात सुखदेव गोस्वामी जो प्रिया जी के सुख थे उनको यहां रहना पड़ा और सुखदेव जी ने भागवत की कथा सर्वत्र विश्व में प्रचार की। ऐसे ही हनुमान जी भी आ रहे हैं और भगवान की जहां भी कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं, जहां भगवान का नाम होगा वहां पर पहुंच जाते हैं। ये हनुमान जी की विशेष विशेषता है। कभी कभी तो वो हरि कथा के प्रारंभ में आते हैं, यहां तक कि कुष्ठ रोगी का रूप धारण करके आते हैं जो उनको कोई तंग न करे, और जब लीला समाप्त हो जाएगी सब चले जाते हैं तब उस स्थल को कथावाचक सबको प्रणाम करके फिर जाते हैं। हनुमान जी राम के एकांतिक प्रिय हैं, इसलिए ऐसा, इसलिए भगवान ने अपने लीला कथाओं को जगत में छोड़ करके और हनुमान जी को छोड़ करके उसके द्वारा जगत का शेष कल्याण किया। अभी शत्रु की बात है कि प्रचेताओं के वंश में महर्षि वाल्मीकि एक ऋषि हुए हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो एक समय तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी कहाँ है, प्रयाग के पास ही में कोई नदी थी, अभी है या नहीं मैं नहीं कह सकता, उसी के पास में जो गंगा जी में मिलती थी, तमसा नदी के किनारे प्रयाग के पास ही में, जहां पर कि भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, भरद्वाज ऋषि प्रयाग में ही रहते थे, वाल्मीकि जी का आश्रम, वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम को उनको दे दिया था, जहां पर राम भी आए थे भरद्वाज से मिले, लक्ष्मण जी भरत भी आए थे उनसे मिले थे, बहुत प्रभावशाली थे। मिनटों में राम की सारी सेनाओं को, भरत जी के सेनाओं को खिला दिया, पिला दिया, रानी के लिए बहुत सुंदर विश्राम गृह बनाया। तो ऐसे ये भारद्वाज ऋषि थे जिनके गुरु वाल्मीकि जी हैं। एक दिन अपने इस शिष्य को लेकर के, भारद्वाज जी को लेकर के वाल्मीकि जी तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। वो जब ही स्नान कर रहे थे, अब स्नान करके ऊपर आने वाले थे, तो उन्होंने देखा एक पेड़ की डाल पर क्रौंच और उसकी पत्नी क्रौंची दो पक्षी बैठे हुए थे, और एक बहलिया पीछे से आकर अपने बाणों से क्रौंच का वध कर दिया। ये लोग दोनों क्रौंच और क्रौंची अपने मुख को सोचों को मिला करके बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से बात कर रहे थे, किंतु बीच ही में बहेलिया ने मारा बाण। वो समझता कि ये सब तो चीजें हमारे खाने पीने के लिए, जैसे आज के लोग करते हैं, इसलिए बाण मारा। उनकी भावना को नहीं समझता आज ये भी कितने प्रेम से परस्पर बात कर, और इसी बीच में बाण लगा हृदय में और बस इस पार से उस पार हो गया, और वो छटपट छटपट करता हुआ प्राण प्रत्याग। वाल्मीकि जी ने देखा ऐसा घोर अन्याय, वाल्मीकि जी ऋषि कैसे थे, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म की अनुभूति रखने वाले, सर्वज्ञ और संसार के से उदासीन, किसी के मरने जीने से उनको कोई लाभ हानि नहीं थी, वो जानते थे जे आत्मा अजर है, किंतु फिर भी बड़े शोकग्रस्त हो गए और बोले, बहेलिए मानिषाद शाश्वत शाप्तों के
मानिषाद प्रतिष्ठा शाश्वती समाजत कौनच मिथुनात एकम बधि काम मोहितम।
अरे बहेलिया, तुमने एक काम में मोहित, बड़े प्यार से बातचीत करने वाले क्रौंच और क्रौंची में से क्रौंच को मार डाला। किस लिए मारा? अब फिर से इस वन में नहीं आ सकते, यदि आएगा तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, मारे जाओगे अपने आप, मत आना, तुमको शांति कभी जीवन में ना मिले। इसके बाद में जब वो अभिसंपात दे चुके तो कहते हैं कि बेटे भरद्वाज, आज मैंने ये क्या कहा, इन लोगों को जगत के दुख और सुख को देख करके मैं मुग्ध हो गया, मुझको तो ऐसा होना नहीं चाहिए। करोड़ों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, मैं जानता हूं कि आत्मा अजर है, अमर है, किंतु मुझको ऐसा क्यों हुआ? और कुछ स्थिर न कर सके और अपने आश्रम में लौटे, चिंता कर रहे थे क्यों। अच्छा, जो मैंने ये अभिसंपात दिया, ये तो चार चरणों का एक छंद है, 16-16 अक्षर, एक एक उसके चारों भागों में से एक एक भाग में है, और इसको देखते हैं कि सभी छंदों में गाया जा सकता है, वीणा पर गान किया जा सकता है, ये ऐसा कैसे हो गया, हमारे मुख से निकल गया, मैंने जानबूझ करके नहीं निकाला इस श्लोक। इतने में थोड़ी देर के बाद में ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी को देख करके वाल्मीकि जी ने उठ करके उनका अभिवादन किया, उनको दंडवत प्रणति की, और फिर कहे, आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा, जगत के गुरु, जगत का यह सृजन करने वाले, आप हमारे यहां पर पधारे, कृपा करके अपना आदेश दे, मैं क्या करूं। सुन करके ब्रह्मा जी बोले, सवेरे की बात याद है, जब तुम स्नान करने गए तमसा नदी के किनारे, तुमने देखा क्रौंच क्रौंची को मरते हुए, और तुमने के श्लोक चाचरणबद्ध समस्त स्वरों में गायन करने वाला तुम्हारे मुख से के श्लोक निकला था, कहां तो निकला तो था, मैं इसी की चिंता में था, ये कैसे निकल गया। उन्होंने कहा, जी मेरी कृपा से निकला, तुम सौभाग्यवान हो। अब तुम एक बात करो, जिस प्रकार का छंद चार चरणों वाला तुमने लिखा है, और इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं, और समस्त स्वरों में ताल में इसको गाया जा सकता है, अब राम की सारी लीलाओं का तुम वर्णन करो, प्रभु यही चाहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा समय तुम्हारे पास आया, इसलिए तुम छंदोबद्ध करके सात कांडों में रामायण की रचना करो, जिसमें राम की मधुर औदार्यपूर्ण लीलाओं का वर्णन। उन्होंने कहा, जी मैंने तो देखा नहीं कभी, राम की लीलाओं को तो मैंने अनुभव नहीं किया, फिर मैं कैसे वर्णन करूंगा। और यू कैन सिट हियर और यू कैन कम हियर वेर यू वांट।
वाल्मीकि ने बताया, मैं तो रामलीला देखा नहीं, मैं कैसे वर्णन करूं,
इसकी अनुभूति नहीं हुई,
उन्होंने कहा ये ब्रह्मा जी
हमारे संप्रदाय के प्रथम गुरु है। चार संप्रदाय है, उनमें से हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आदि गुरु हैं। वे उन्होंने कहा ठीक है, तुम समाधि ग्रस्त हो, भक्ति के द्वारा चित्त को समाहित करो और समाधि में मेरी कृपा से सब लीलाओं को देख सकोगे। ठीक ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। व्यासदेव जी सर्वज्ञ होते हुए भी, भगवान के अवतार होते हुए भी, यहां तक कि उन्होंने वेदों का भी भाग किया, अपने शिष्यों को चारों वेदों को अध्ययन कराया, महाभारत और पुराणों की भी रचना की, जिस महाभारत में ये श्रीमद् भगवत गीता है इसकी भी उन्होंने रचना की, और सबका अधिकार जिनमें है ऐसे पुराणों का भी, महाभारत की भी रचना की, अंत में समस्त वेद और उपनिषद के वाणियों का सामंजस्य करने के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। आचार्य वही है जो इन वेदांत का कोई भाष्य लिख सके, इसलिए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित और आचार्य शंकर, इन चारों ने अपने अपने संप्रदाय के लिए एक एक भाष्य लिखा। यहां तक कि निम्बार्काचार्य ने भी पारिजात भाष्य इत्यादि लिखा। इसके बिना हुए गहन अध्ययन किए बिना अपने संप्रदाय का आचार्य नहीं हो सकते। तो उन्होंने सब कुछ किया और उसकी सुंदर व्याख्या अपने आप की, जिन श्लोकों का परस्पर विरोधी भाव था उनको भी सामंजस्य करके ले आया। वो श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी के रूप में केवल प्रकाश किया, जिसको ब्रह्मा जी ने उनको दिया था, या भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दी थी। ये करने पर भी उनको मानसिक शांति नहीं थी। इतने में नारद ऋषि आए, उनके गुरु, इस भगवान के भी गुरु, कोई अनहोनी बात नहीं। बिन गुरु भवन धी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा के समान ज्ञानी और शंकर के समान भी ज्ञानी व्यक्ति हो बिन गुरु के, इस भवसागर को हम नहीं पार कर सकते। आजकल पाश्चात्य भाषा को सीख करके गुरु का नाम सुनते ही फड़क जाते हैं लोग, विशेष करके नई नई संप्रदाय निकली हैं, नए नए आजकल सोसाइटियां इत्यादि निकली हैं। आजकल कोई माया का प्रभाव वाली कोई मायावती भी हैं, जिनको मनुवादियों से चिढ़ है, सुनते ही कांपने लगती हैं, होश में नहीं रहती, किंतु नहीं जानते हैं कि मनु उनके भी बाप हैं, उनके बाप के भी बाप। उन्होंने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, उनकी समझ में खाक पत्थर नहीं आता, जिस दिन आ जाएगा उनके भक्त हो जाएंगे। ये मनुष्य मानव निकला है उसी मनु महाराज से, तो उसके बिना वो कैसे पैदा हो जाएंगे। तो वो लोग गुरु के नाम से चिढ़ते हैं, विशेष करके आधुनिक अंग्रेजी पढ़ने वाले कॉलेज और स्कूल में, जिनको पारमार्थिक शिक्षा नहीं हुई, कह लेंगे टीचर, ये तो बात ठीक है, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ये सब कह देंगे, किंतु गुरु नहीं। किंतु वो शब्द शब्द हैं, वो सीमाबद्ध शब्द अर्थ वाले, और गुरु व्यापक शब्द है। गुरु माने भारी, गुरु माने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर करके प्रकाश ला दे, वो गुरु गुरु है। यह संसार अंधकार में है, आसक्ति इस अंधकार की जननी है। हम लोग समझते हैं कि बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु ये नहीं जानते कि अभी मृत्यु है। हमारे बहुत आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री का आप लोग नाम जानते होंगे, ताशकंद में गए रशिया के लीडरों से, पाकिस्तान के लीडरों से मिलकर के शांति के लिए बात करी, और दूसरे दिन खत्म हो गए। भारतवर्ष के चुने हुए प्रतिनिधि थे, बुद्धिमानों में एक, वो बुद्धि और जानकारी गई कहां? साथ ही साथ में खत्म। इस पर किसी का बस नहीं चलता। इसलिए व्यास जी काजे गुरु जी, ये सब तो मैंने किया, किंतु मन में शांति नहीं है, और शांति का कारण क्या है मेरी नहीं समझ में नहीं आता। तब उन्होंने बतलाया, तुमने अर्थ धर्म काम मोक्ष की जो बातें जगत के लिए बतलाई है, इसे संसार का कल्याण नहीं होने वाला, तुमको इससे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान की लीला कथाओं को, जो बहुत प्रभावशाली है, जिससे तुम्हारी भी शांति हो जाएगी और जगत को भी सुख और शांति मिलेगी, भक्ति योग के द्वारा तुम इसका समाधि में दर्शन करो। तो उन्होंने समाधि में दर्शन करके भागवत का प्रकाशन, ठीक वैसे ही वाल्मीकि जी का रामायण उन्होंने लिखा नहीं, वो वाल्मीकि जी का बनाया हुआ नहीं है। क्या है? समाधि में अनुभूत राम की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाओं को कोई बतला बना नहीं सकता, कौन बनाएगा, किसको सामर्थ्य है यह समझने के लिए? भी ऐसी पारमार्थिक बुद्धि चाहिए। हमारे व्यास जी ने पुराणों को लिखा नहीं, हमारे वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं रामायण को, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को, भाई आंख में लगता है बहुत जोर से, ये भी आंख में लगते हैं,
दोनों व्यक्ति को ना, दोनों लाइट को उधर घुमा
दी, आंख में लगती है। और दो जूनो दे विल डू दस विल डू
दो जुआर में आप जरा लाइट की व्यवस्था ठीक है, उधर में लाइट जले कोई बात नहीं, लाइट चली गई। अच्छा तो हमारा वाला लगाइए
सर जी, माइक दीजिए सर,
माइक माइक
सर जी, माइक माइक माउथ पीस
तो समाधि में उन्होंने देखा और उसी को अपने अक्षरात्मक रूप में व्यक्त किया। तो समाधि मैंने क्या, सम धी समाधि, वो एक ऐसी चीज में राज में पहुंच जाता है जो भगवान की लीला कथाओं को समझ सकता है, और उसके हृदय में भगवान की लीला कथाएं आविर्भूत होती हैं। सबके हृदय में ऐसा होना नहीं होता, इसलिए समाधि योग उन्होंने धारण किया, चित्त समाहित हो गया। क्या किया? शरणागत। मैं कुछ नहीं जानता, आप कृपा कीजिए, गुरु को भगवान को आदेश मत दो, खबरदार आदेश मत दो। वे हम लोगों के नौकर चाकर नहीं है, गुरु और वैष्णव और भगवान। हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना करो, जैसे वाल्मीकि जी ने की, जैसे व्यास जी ने की, जैसे भक्त लोग करते हैं, जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया। इसलिए किसी भी हालत में ऐसा मत समझो जी हमारे गुरु जी ये चीज नहीं समझते, कभी खबरदार जीवन में मत समझना, नहीं तो अपराध से भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए वाल्मीकि जी शरणागत हुए, किसके? पहले अपने गुरु नारद जी और ब्रह्मा जी के, और फिर शरणागत होने के बाद में भगवान राम के, श्री रामचंद्र जी के शरणागत हुए और बोले मैं आपका संपूर्ण रूप से शरणागत हूं प्रभु, आप मेरे हृदय में प्रकट हो। हमारे जितने भी अच्छे अच्छे मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, उनमें प्रचोदयात एक प्रार्थना मूलक शब्द है। मतलब क्या? आप जैसे हैं, जैसे शक्तिमान हैं, जैसे मधुर स्वरूप वाले हैं, जैसे हैं ऐसे ही प्रचोदयात हमारे हृदय में उदित हो, प्रकटित हो। इस प्रार्थना से हमारे गुरु परंपरा में, वैष्णव परंपरा में ये सब मंत्र आ रहे हैं। गुरु जी के लिए भी यही मंत्र है, ब्रह्म गायत्री में भी यही मंत्र है, काम गायत्री में भी यही मंत्र है। वहां पर भक्त शरणागत होता है, मैं जैसा तैसा हूं तुम्हारा ही हूं, और ऐसी दशा में भगवान उस पर कृपा करते हैं। बिना भगवत कृपा के भगवान को नहीं जान सकते। सेई जाने जहु देहु जनारी, गीता में भी यही, भागवत में भी यही, उपनिषद में भी यह ऐसा है। नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया बहुना सुतेन जमे एव विणुते तमेव लब्ध्वा विभृंते। भगवान कहते हैं नयमात्मा प्रवचने न, बहुत प्रवचन देने वाले वक्ता हैं तो भगवान को जान लेंगे? नहीं। वेदों के ज्ञाता हैं? नहीं। ज्ञान से कर्म से भगवान को जाना जाएगा? नहीं। न मेधया, ओ बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाएगा। कैसे जाना जाएगा? मैं जिस पर कृपा कर देता हूं उसी को अपना तत्व जानता हूं, अन्यथा जान नहीं सकता। ब्रह्मा जी को भी ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं जान गया भगवत तत्व को, उनको दूर से प्रणाम है। मैं कुछ नहीं जान सका, अपने लिए कहते हैं। तो ब्रह्मा जी से चार मुख वाले, चार शीर वालों से बढ़कर के कौन होगा इस जगत में? जब वही नहीं जानते तो हम क्या जाने? इसलिए भाई भक्ति राज्य में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना है। जो शिष्य ऐसा नहीं कर पाता वो भगवान की कृपा नहीं पा सकता। खूब सावधान हो करके गुरु का विचार लेकर के चलो, उनके आचरण को लेकर के चलो, उनमें कोई कमी मत देखो। देखना है तो पहले ही देख लो गुरु करने से पहले, और इसके बाद में उनके मन के भावों को समझ करके वैसे ही चलने की चेष्टा करो। ये शिष्य है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो शिष्य नहीं है। न कभी किसी का भी आदरणीय पात्र हो सकते हैं। कभी कभी गुरु के प्रभाव से शिष्य को कुछ सम्मान मिलता है, कुछ लोग उसकी बातों को सुनकर के आदर देते हैं, और यदि वो समझ गया कि ये मेरे गुण के लिए, मेरे लिए ही मुझे आदर कर रहे हैं, तो कोई जगत में उससे नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता। इसलिए शरणागत होने पर भगवान भी उसी के बस भी हो जाए। बस उन्होंने देखा राम की बाल लीलाओं से लेकर और पुनः साकेत प्रवेश, विवाह का, राम का विवाह भी देखा, जनकपुरी का दृश्य देखा, फिर रामचंद्र जी का वनगमन देखा, फिर आदौ राम तपो वनादि गमनम हित्वा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम इत्यादि लंका दाहनम
बाली निर्दनम समुद्र तारणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि श्री रामायण।
बस ये रामायण हो गया, थोड़े में ही पूरा रामायण हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी रामायण की कथाओं को देखा और सबसे पहले भारद्वाज को पढ़ाया, जैसे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को प्रकाशित कर अपने बेटे और शिष्य सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी ने 16 वर्ष की उम्र जैसे वाली सुरीली कंठ नाना प्रकार के लयबद्ध छंदों से भागवत के पद्यों का उच्चारण करते हुए और विभिन्न रूप से उसका अर्थ बतलाते हुए परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव ने किया। व्यास जी ने भागवत की रचना तो की, प्रकाश तो की, किंतु कहीं किसी सभा में भागवत का प्रवचन किया ऐसा तो नहीं सुना जाता। जो प्रवचन किया, प्रवचन कौन किया? सुखदेव गोस्वामी जी ने किया, इसके बाद में आचार्यों ने। उसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने इसका प्रकाश तो किया, वाल्मीकि रामायण जिसको कहते हैं, पढ़ाया भरद्वाज को, किंतु फिर भी उनके किन शिष्यों ने जगत में प्रचार किया? लव और कुश ने, जिनको बड़े प्यार से पढ़ाया, बचपन से पालन किया, उनका नाम संस्कार किया और उनको धनुर्विद्या इत्यादि सारी शिक्षाएं दी, पारमार्थिक शिक्षाएं दी, तत्वों को ज्ञान कराया और अंत में सारी विद्याओं का पठन पठा करके और लव कुश को राम की सभा में ही उनको आदेश दिया, जाओ सुनाओ। और जब ये सुनाने लगे उस समय में सीताराम का विवाह और फिर अयोध्या आगमन और उसके बाद में सीता जी का हरण का प्रसंग सुनाया, राम के वनवास का प्रसंग सुनाया, तो सभी अयोध्यावासी लोग रोने लगे। तब तक लव कुश भी ये नहीं जानता था ये हमारे पिता यही राम हैं और उनकी मैया वही सीताराम की भार्या, नहीं जानते वो, तो केवल मैया जानते थे ये मेरी मैया है, कि राम की पत्नी है ये उनको अभी तक पता नहीं था, और राम ही मेरे पिता हैं ये उनको कुछ पता नहीं। उनको सीता जी को वन देवी कहते थे, वन देवी, सभी लोगों को वाल्मीकि ने जाने का दिया, सीता जी इसका नाम कोई मत कहीं प्रकाश करो ना? और ये मत बतलाना जी उनकी ये पत्नी है, ये जानने वाले ऋषि थे उनको भी मना कर दिया था, इसलिए वन देवी के नाम से वो प्रसिद्ध थी और ये अपनी मैया के रूप में जानते थे, किंतु उस रूप में जबकि होने ये जब इस प्रकार से जबकि गाने लगे सब लोग मुग्ध होकर के रोने लगे। इस प्रसंग को मैं पीछे बतलाऊंगा, अभी तो 2-4 दिन कथा होगी, ये मैं पीछे बतलाऊंगा, अभी एक थोड़ा सा कोई कीर्तन कर दो, इसके बाद में फिर बोलूंगा। ओ जल्दी बजाओ, निकट आ जाओ, जाओ उधर 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 में उसके पीछे और ये सामने बैठ।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधा। Yeah.
हाँ तो फिर आप लोग मेरे पास में आ जाए और हरी कथा सुनिए। अंतरी मछवरी दैट आई एम स्पीकिंग वेरी स्वीट पास्ट टाइम्स ऑफ रामचंद्र बट इन हिंदी एंड यू फ्रॉम ऑल सो मेनी कंट्रीज आर assembled but you are not testing this Hari Katha and if I will speak in both languages in English and Hindi my mood will be lost and I will be tired so much so only I can feel some his translating and all you are understanding know how but some are here those know but I know that Arand Maharaj is understanding Gausundar too but he will know and he will explain all these things later so you should excuse me for this अब हम श्री राम की कथाओं पर आ रहे हैं। मैंने बतलाया जी राम के इस जगत में आने का प्रकट होने का कारण क्या था। यही मूल कारण है जीवों पर दया करके उनको भव सागर से पार कराने के लिए वो अपनी लीलाओं को रखते हैं, आचार्यों के रूप में अपने परिकरों को भेजते हैं। ये मूल कारण। किंतु वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने पद्म पुराण में व्यास जी ने राम के अवतरण के बहुत से कारणों को गिनाया है। पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे, देवताओं ने ब्रह्मा के साथ में आकर के ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ में भगवान से प्रार्थना की, आप कृपा करके इस जगत में पधारिए, अपना धर्म की संस्थापना की। एक दूसरी कथा में हम देखते हैं नारद ऋषि को तो जानते ही हैं। यह नारद ऋषि बिना बजाते हुए सारे विश्व में राम की कथाओं को कह करके जगत का कल्याण करते हैं। एक समय इनके मन में आया ये मुक्त पुरुष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हुआ कैसे? भगवान की अघटन घटन पटियसी शक्ति माया के द्वारा, जोग माया के द्वारा उनके हृदय में आया। मैं जैसे भगवान श्री राम का प्यारा हूं और उनको तत्व को जानने वाला हूं, हमारे समान और कोई है ही नहीं ये, और मैं माया से मुक्त हूं, माया हमको स्पर्श नहीं कर सकती, अर्थात तो संसारिक आसक्ति हमको आकर्षण नहीं कर सकती। यह देखते ही भगवान को बड़ी दया आई, हमारे भक्त में ये कहां से एक विष पैदा हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, नारद जी जब उनका गुणगान करके और वहां से उतर रहे थे, भगवत धाम से वैकुंठ से जब उतर रहे, भगवान ने बिछी ने योग माया के द्वारा, महामाया के द्वारा एक बड़ी अच्छी चीज की रचना कर दी। क्या की? एक सुंदर नगरी, जहां उतरे वहां पर एक बड़ी सुंदर नगरी, नगरी में गुलाबी नगरी, जयपुर से भी आकर्षक उद्यान, फौहारे, तरह तरह की सब चीजें, बड़ी सुंदर सुंदर मोर पक्षी इत्यादि, जू गार्डन, उसको देख करके इन लोगों ने अब कल्पना करके किया है। और उसमें पुरुष और स्त्रियां कैसे, अद्भुत सुंदर, कश्मीर की लड़कियां बहुत सुंदर मानी जाती हैं, जनकपुर की भी स्त्रियां मानी जाती हैं, उनसे भी परम सुंदरी लड़कियां वहां पर और उसमें राजा की लड़की थी, अद्भुत सुंदरी, 16 वर्ष की किशोरी, और उसपे स्वयंवर रचा हुआ था। देश विदेश से राजकुमार आए हुए थे, एक से एक बन ठंग करके आए, और उसमें राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सुंदर में पहुंचे हुए जितने राजकुमार हैं, बड़े सुंदर से सुंदर, उनमें किसी को एक करके जिसको वो पसंद है करेगी मेरी लड़की, उसके गले में जय माला डाल दी। नारद जी ने देखा ये लड़की बड़ी सुंदरी है, ऐसी सुंदरी तो हमने कहीं देखा ही नहीं, बस मुग्ध हो गए। मुग्ध होकर के राजा के पास में गए, आपकी लड़की का स्वयंवर है मैंने सुना है, मैं समझता हूं कि आप स्वयंवर न कराएं, वो लड़की को हमको कन्यादान दे दी। राजा ने कहा महाराज आप पधारिए, कल इस सभा में आइए, मेरी लड़की पसंद करके आपके गले में जय माला डाल देगी, तो फिर आपसे उसकी शादी कर दूंगा। अच्छा एक बात करो, कल की बात कल रहे, आज की बात करो, मैं उसका हाथ देखूंगा और देख करके हस्तरेखाओं को देख करके मैं देखूंगा जिसे कैसी इसकी हस्तरेखाएं हैं, तुमको बतलाऊंगा। राजा ले गए अपने रनिवास में और लड़की को ले आए, वो तो बस देखते ही रह गए, भूल गए अपने को, और हाथ देखने लगे तो देखा जिसको ये पति रूप में वर्ण करेगी उसका पति अजर अमर होगा, विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक होगा, उसे कोई कभी जीत नहीं सकता, उसको कोई रोग शोक मोह भय नहीं रहेगा। ओ इतनी गुणवती, अब इसे शादी किसी न किसी प्रकार से कर लेना ही उचित है, किंतु राजा बदमाश हमारी बात नहीं मानता, इसलिए दूसरे दिन सवेरे उठ करके भगवान का ध्यान लगाया, राम का, और लगा करके कहा प्रभो आज तक हमने आपसे कोई चीज वरदान नहीं मांगा, अब तक तो मैं भजन साधन करते हुए आपको प्रसन्न करने में हम लगे हुए थे, तो मैं समझता हूं कि हमारी कम से कम आज एक प्रार्थना पूर्ण कर दीजिए। इतने में भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा जैसे प्रभु मैंने आपको इसीलिए स्मरण किया, तो इसीलिए तो मैं आ गया, तुम क्या चाहते हो? कहे आज तक तो देखो हमने आपसे कुछ कभी मांगा तो नहीं मांगा, तो फिर एक चीज यही मांगते हैं कि आप त्रिलोकी को जय करने वाले इस सुंदर रूप को आज मुझको उधार एक दिन के लिए दे दी, जिसको लेकर के मैं सुंदर में जाऊं और लड़की रीच करके हमको गले में जयमाला दे दे और विवाह मेरा हो जाए, इसके बाद में आप भले ही ले लीजिए किंतु इतने समय के लिए अपना रूप दे दीजिए। भगवान बोल जे तेरा कल्याण हो, यो कल्याण हो, ये कहकर ये नहीं किया जिया साहू, बड़े चतुर है, चतुर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, उन्होंने ये नहीं कहा, बस कहा हाँ तुम्हारा कल्याण हो, बस चले गए। अब उन्होंने सोचा जी तो रूप दे दिया, अब सब 8-9 बजे राजसभा बैठी, स्वयंवर हुआ, देश विदेश के अद्भुत से अद्भुत सुंदर सुकांत लड़के जुआ किशोर सब वहां पर उपस्थित हुए, और लड़की हाथ में जयमाला लेकर के चारों तरफ में ढूंढ रही है कि इसमें से सुंदर कौन है जिसके गले में मैं माला, पहले इधर गई ढूंढा तो कोई नहीं मिला, तो फिर बीच में गई, फिर उधर गई, इधर गई, कोई मन का मुताबिक मिला नहीं। शंकर जी तो भांग धतूरा खाने वाले, हड्डियों की माला पहनने वाले, मुंडमाला पहनने वाले, सांप की माला और श्रृंगार करने वाले, ये हमको पसंद है, ये चार मुख वाला ये हमको पसंद नहीं, ये हाथी का सूंड वाला जो आया है ये तो बेडौल रूप का है, इसका पेट इतना लंबा चौड़ा है मैं इसे पसंद नहीं करती। इसी प्रकार से जितने देवता लोग थे यहां भी मनुष्य रूप धारण करके आए, किंतु किसी के गले में मैं जाल माला नहीं। और इधर नारद जी क्या करते हैं, ओह अब तो मेरा बहुत सुंदर रूप हो गया होगा, इसे लड़की जरूर हमको दे करके हमारे गले में। और भगवान ने क्या किया, उनके साथ में शंकर जी ने अपने दो गणों को भेज दिया, वो नारद जी के एक तरफ में, एक तरफ में एक दो, वो शंकर जी के परिकर, और कह रहे हैं कि वाह 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 क्या ही अद्भुत रूप, क्या ही अद्भुत। और वो समझते कि सचमुच में ही कह रहे हैं जी, क्या रूप क्या रूप। नारद जी से भोरे बारे कुछ समझ नहीं पा रहे, इतना सुंदर रूप और लड़की हमारे प्रति मोहित नहीं हो रही है, इसका कारण क्या। वो वहां से उठ करके जब लड़की उधर गई तो इधर जाकर के अपना गला बढ़ाया, जी हमारा शायद गला नहीं देखती है रूप नहीं, इसलिए अपना हाथ बढ़ाया तो वो नाक सिकोड़ करके उधर चली गई, चारों तरफ में उनको घुमा दिया नचा दिया। ये है माया, बुद्धि शुद्धि उद्धार नहीं रहती, इसलिए ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने की चेष्टा मत करो, कर्म के द्वारा नहीं भक्ति के द्वारा। भक्ति भक्ति को किसी सुंदरी स्त्री को भी ले दे करके मोहित नहीं होती, ज्ञान पुरुष है, इसलिए ज्ञानी बनेंगे तो आपको मोहित कर लेगी माया, उधर मत जाओ। किधर जाओ, भक्ति की तरफ, कितनी भी सुंदरी हो, यहां तक कि इंग्लैंड की डायमा ना क्या नाम उसका कि डाइन है ना, डाइन डाइना डाइन नहीं तो देखो यही जगत का ये है, इसलिए इसके प्रति मुग्ध मत हो, किंतु मुग्ध हो रहे हैं अभी जो नहीं है उसी को हम मानने कि हमारा बेटा बेटी है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, मैं पति हूं वो पत्नी, कोई किसी का नहीं इस जगत में, प्रभु एकमात्र है सब कुछ, इस चीज को समझो। इसीलिए भगवान राम मारे, और इसीलिए हमको भेजा जे जाओ लोगों से कहो जो इकट्ठे होंगे, कोई ना आवे तेरा काम रे, कोई नहीं आएगा काम, क्या है भाई जरा बोलो तो, कोई ना आवे काम रे।
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, गोविंदा के नाम बिना तेरा, गोविंदा के नाम बिना तेरा कोई नया मे काम रे, कोई नया मे
आप लोग चंचल मत होइए, अभी पांच मिनट और समय दें तो कुछ थोड़ा सा बतलाएं। हमने समझा था जो 7:30 बजे तक कथा होगी। इसी बीच में यदि चंचल होने लगेंगे तो और लोग भी चंचल होने लगेंगे। हम लोग तो अधिक दिन रहेंगे नहीं, कल परसों तक रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो और 10-15 मिनट का समय आप लोग रोज दिया करेंगे, ऐसे बन कर अपने घर से ही तैयारी करके आए, और रसोई 5 मिनट के बाद में बनेगी, कोई हर्ज नहीं उससे, किंतु ये कथाएं आपको रोज रोज नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अचंचल चित्त से, शांत चित्त से, और मुझे 10-5 मिनट का समय दें, ये प्रसंग जरा समाप्त करें तो बीच में ही रह जाएगा। तो हाँ नारद जी इधर कर रहे हैं शीर, किंतु लड़की दे नहीं रही है गले में माला, थोड़ी देर के बाद में देखा क्या गरुड़ पर बैठे हुए वही प्रभु वहां पर उपस्थित हो गए, और ये लड़की बिना सोचे उनके गले में जयमाला डाल दी, और भगवान उसको अपने गरुड़ पर बैठा करके अपने बगल में ही बैठा लिया, और बस उड़ करके बैकुंठ में चले। नारद जी को बड़ा क्षोभ हुआ, देखो तो इतना बिगड़ेल आदमी, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसके आगे नाथ नहीं है, कोई नाथने वाला नहीं उसका, और पीछे पगहा, पगहा माने रस्सी बांधने की, पशुओं को बांधने की, तात्पर्य यही हुआ। देखो तो इनको तनिक भी विचार नहीं है, मैंने कल्प कल्प तक इनकी सेवा की, इनका भजन किया, इनकी आराधना की, और मेरी थोड़ी सी प्रार्थना नहीं सुने, और हमारे देखते देखते उस लड़की को गरुड़ पर बैठा करके लेकर के चले गए, बड़े बिगड़े। अब उनके साथ में जो दो शंकर जी के परिकर थे, गण थे, उन्होंने कहा आहा क्या अद्भुत रूप आपको भगवान ने दिया, जरा आईने में तो देख लीजिए। तो आईना तो था नहीं, एक नदी थी उसके किनारे गए और उसमें देखा, अरे ये तो लंगूर होता है ना, बंदर हनुमान वाले, मुख काला पूरा ठीक एकदम बंदर जैसा, ऐसा अब तो इनको बड़ा क्रोध हुआ जी, हमको अंत में बंदरों का लाल मुख भी देते तो कोई बात नहीं, ये बंदर का जला हुआ काला मुख हमको दे दिया, बड़े बिगड़े। और उसी समय में पहुंच गए बैकुंठ में, पहुंच में वो पहले से हाथ जोड़ करके उसी लक्ष्मी जी के साथ में, वो दूसरी नहीं थी लक्ष्मी जी थी, उसको वैसा बना करके भेजा था, और उसके साथ में खड़े थे, प्रभु आपका स्वभाव मैं ऐसा जानता तो आपका कभी भी भजन नहीं करता है, आपने ऐसा मुझे बंदर जला हुआ बंदर का मुख दे दिया, और मैंने आपसे कहा था जी अपना रूप दें, आपने हमें ठग दिया, जाओ मैं भी तुमको अब संपात करता हूं, श्राप देता हूं, आप ही जगत में आएंगे, और अपने जिस प्रकार से मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, विरह में तड़प रहा हूं, आप बन बन में डोलेंगे उस स्त्री के विरह में और तड़फेंगे, आपकी स्त्री को कोई चुरा ले जाएगा, और जो बंदर जले हुए मुख वाले हैं, जो मुख आपने दिया है मुझे, यही आपकी रक्षा करेंगे, आपकी पत्नी का पता लगाएंगे, अंत में यही आपकी सहायता है। इस वचन को रखने के लिए भगवान ने कहा जे एवं मस्तु ऐसा ही, वो तो चाहते थे जे जगत में जाए कोई कारण बने, और जो ही ये हो गया विषमपात दिया त्यों ही अपनी माया को, जब अब बेटी तुम आ जा लौट जा, बस माया छूट गई। अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने बहुत अपराध किया, मैं सोचता था कि जगत में मैं काम को विजय कर सकता हूं, इस काम को विजय करने वाला कठिन जगत में नहीं है, ब्रह्मा जी भी सुंदर लड़की को निर्माण करके उस पर मुग्ध हो गए, और शंकर जी को जानते हैं मोहिनी रूप देख करके उसके पीछे ऐसे भगे, जो पार्वती जी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं, पकड़ नहीं सके, उनका मृगशाला उतर गया, हाथ से त्रिशूल गिर गया, और क्या करे नंगे दौड़ने लगे किधर, जिधर मोहिनी भगी जा रही थी उधर ही में अर्धनग्न अवस्था में, और ऐसे फूल को अपने हाथों में करती हुई किशोरी रमण लड़की, अब शंकर जी भगे डोबते डोबते उनको, पार्वती अरे तुमको लज्जा नहीं आती है? अंत में भगवान ने जब माया हटा दी, अरे ये मैं क्या कर रहा था, तो शंकर को भी नचा देती है, ब्रह्मा को नचा देती है, तो ये नारद तो ठहरे ऐसे ही, केवल कृष्ण ही ऐसे हैं है? जो माया को नचा देते हैं। देखो सठ करोड़ों 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 गोपियां कैसी, उमा रंभा सत्ता इत्यादि से भी अधिक सुंदरी, ब्रज की गोपियां रुक्मणी सत्यभामा से भी, पूर्ण चंद्र रात का समय, जमुना नदी का किनारा है, हरे भरे वृक्ष, क्वायल कुहक रही, मोर नित्य कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हो, कोई नहीं पुरुष केवल अकेले, और इतनी लड़कियां ब्रज की, नहीं जी घर लौट जाओ, मैं भगवान हूं हमारा दर्शन करने के लिए आई, ठीक है तुम्हारा दर्शन हो गया अब घर में लौट जाओ। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, भले ही कमाई ना करने वाला हो, स्त्री के लिए पति भी त्याज्य नहीं है, छोड़ने लायक नहीं, कभी ना छोड़े, उसकी सेवा करें, यही हमारी वैदिक संस्कृति है, कुष्ठ व्याधि होने पर भी उसे मत छोड़। और आजकल क्या होता है, यदि पति ने कहा जैसे सिनेमा घर आज तुमको नहीं ले जाएंगे, आ बस छोड़, बस तलाक, बात बात में तलाक, मिनट मिनट में तलाक, और पश्चिम की बड़ी हवा जोर से आ रही है, और ये आंधी हमारे देश में भी आकर के बहुत लोगों को चपेट में ले रही है, खबरदार मेरी बेटियों और मेरे बेटों, प्रेम के चक्कर में मत पड़ना, माता पिता शादी कहीं कर दे वहां पर कर लो, और लव मैरिज करेगा तो दो दिन में डाइवर्स हो जाएगा, और हो करके तुम पर कोर्ट में नालिश कर देगी, और 10-5 लाख रुपए निकाल करके तब जाएगी, इसलिए समझ बुझ करके करो। तो माया ऐसी कैसे किसको नचाया नहीं, केवल कृष्ण को नहीं नचा सकी, एकदम निर्भीक रहे। इसलिए ये भागवत में जो रासलीला है वो माया के ऊपर में कृष्ण की विजय है, इस तरह से लोगों ने लिया। तो इसलिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ और सीता जी का चोरी हुआ, और फिर रावण ले गया, और उसको पता लगाने के लिए हनुमान जी ने पता लगाया, बंदर और भालुओं ने उसमें युद्ध करके फिर सीता जी को लौटा। ये भी रामचंद्र जी के आगमन का एक कारण है, और भी बहुत है, आप कल बतलाएंगे, आज यहीं तक समाप्त है कथा। कल आप लोग ठीक समय पर आएंगे और 7:30 बजे 7:15 बजे तक का समय लेकर के हाथ में आएंगे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।